તારીખ 5/2/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 37 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
541 इन दिनों में बीमार रहे हैं कहीं नहीं पता चल रहा है। साथ ही एक परिस्थिति वो भी बन रही है कि कृपालु देव की प्रसिद्धि समाज में बढ़ रही थी, बहुत से लोग उनके परिचय में आ रहे थे, संप्रदाय में चली हलचल भी मची, कुछ लोग पक्ष में आए तो कुछ लोग विपक्ष में भी रहे। इस पंचम काल में और खास करके हुंडाव सर्पिणी पंचम काल होने से तीर्थंकरों का भी विरोध हुआ है। विरोध होवे उसमें कोई नई बात नहीं है, तीर्थंकर तो उतने पुण्यवान है कि इसकी बराबरी में जगत में किसी का पुण्य उदय नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है वो तीर्थंकर प्रकृति बोली जाती है, चक्रवर्ती से भी अधिक। फिर भी इस पंचम काल के इस हुंडाव सर्पिणी काल में चतुर्थ काल में भी चतुर्थ काल के प्रारंभ में लोग इतने गड़बड़ वाले नहीं थे, तो भी ऋषभदेव भगवान का विरोध उनके पुत्र ने किया। देखो कैसा संसार है कि मैं मेरे दादाजी को अच्छी तरह जानता हूं, बड़ा ढोंगी है, बड़ा मायावी है, देखो ये समोसन में कितना तेजी से बन गया, ओवरनाइट इतना सब समोसरण बना दिया, और यहां से चले जाएंगे सब समोसरण खत्म। सब मायावी रचना है, बहुत मायावी जादूगर है, सब पर जादू करता है, अट्रैक्शन करता है, सबको ले लेता है, बुला लेता है, अपने चेले शिष्य बना लेता है, ऐसा करता है वैसा करता है, गालियां देते थे। पर वो जी थे भगवान महावीर का, देखो विचित्रता परिणामों की। एक जीव जो भाव में अंतिम तीर्थंकर वाले हैं, वही जीव प्रथम तीर्थंकर का उसको पौत्र के रूप में जन्म लेकर के उनको गालियां देते हैं, पांच विरोध करते हैं, गला काट समझे ना, ये गला काट लड़ाई कर रहे थे ऐसी लड़ाई करते थे। हुंडाव सर्पिणी काल का प्रभाव है और सुनने वाले को और वैराग्य का प्रदान करता है, वैराग्य आता है इससे। तो देखो ये संसारी जैसा है, इसकी वालक क्यों करे जब संसारी जैसा है। आज कोई प्रशंसा करता है कब बुराई करेगा, आज कोई बुराई करता है कब प्रशंसा करेगा, ही चलता है तो संसार में। तो कृपालु देव का कुछ विरोध हुआ था, करते थे लोग, तो उस विषय में जूठा भाई दुखी थे, चिंतित थे कि मेरे गुरु का तो गुरु क्या कहें, मेरे भगवान का विरोध हो रहा है, उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने कहा कोई विकल्प नहीं करिए, शांत रहिए और वितरकता में आगे बढ़ गया, मेरी तो यही शिक्षा है। और आपको जो बीमारी चल रही है तो मेरे परमात्मा जो है योगेंद्र पार्श्वनाथ भगवान, इनका स्मरण कर लेना है। क्यों कि तीर्थंकर होने के बावजूद भी इनके पर भी उत्सर्ग परिश्रम बहुत आए थे, तो तुमको जो परिश्रम हो रहा है बीमारी का उसमें पुरुषार्थ बढ़ाना है, वेदना होगी, कुछ भी हो शरीर में, ये देह का इलाज भी आत्मकल्याण करने के लिए करना है, देहात्म बुद्धि से नहीं करना है। वो बात कहेंगे कि अगर मुमुक्षु या ज्ञानी अपना देह का इलाज करता है तो धर्म साधन करने के लिए करता है, धर्म के हेतु से करता है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए या शरीर के भोग उपभोग के लिए नहीं करता है। तो उस प्रकार का हाँ उसे कोई सामने रखता है, मैंने देह को ठीक करने का, उसको इलाज करने का, ट्रीटमेंट करने का कोई विचार आता है तो इसके पीछे इसका हेतु ये होता है कि अगर मेरा देह ठीक रहेगा तो मैं अपना धर्म साधन आसानी से करूँगा, देह का विकल्प नहीं होगा।
इस तरह का कमजोर भाव का भी उसको निषेध आता है कि मेरे पुरुषार्थ में इतनी कमजोरी है तो मुझे इस तरह का विकल्प आ रहा है, उसको अपनी इस कमजोरी का भी बहुत
खेद होता है,
खेद होता है, पुरुषार्थ को और आविर्भूत
करता है।
मतलब किसी भी प्रकार की कमजोर बात उसको एकदम बर्दाश्त नहीं होती है।
नहीं, ये कमजोरी भी एक दोष है, कमजोरी भी एक दोष है और दूसरे दोष को उत्पन्न करता है। प्रसाद की कमजोरी एक दोष है और वो राग द्वेष को उत्पन्न करता है।
उसको इस प्रकार का समाधान नहीं आता कि मेरी भूमिका में मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा,
नहीं
इस तरह का कमजोर बात उसको
नहीं। उनको अपना पूर्णता का ध्येय है तो पूरी ताकत से वो लड़ता है, हृदय के सामने पूरी ताकत से लड़ेगा वो। कोई बात है, उसका एक दृष्टांत लिया है कृपालु देव ने कि जैसे कोई समुद्र में, मध्य में, समुद्र के मध्य में कोई अपना होड़ी या वाहन लेकर के निकला है और उसमें तूफान आ गया, बहुत तूफान हो रहा है समुद्र का पानी का, और वो तूफान ऐसा है कि उनको किनारे पे जाने नहीं देता, उल्टा पवन चल रहा है, जमीन पर से पवन आ रहा है और वाहन को, दोहड़ी को उस समुद्र में खींच रहा है। समुद्र बैठने वाले को तो किनारे पे जाना है, उनको तो डूबना नहीं है, तो जहाँ तक डूबेगा नहीं या जिंदा है वहाँ तक, या शरीर में ताकत है वहाँ तक, पूरा का पूरा हलेसा इस तरह से मारेगा कि जिससे वो किनारे पे जा सके। वो कभी ऐसा नहीं विचार करेगा कि तूफान ज्यादा है तो छोड़ दो अपना प्रयत्न, अब तो मरने वाले हैं तो मर जाओ ऐसे ही, ऐसा कोई नहीं विचार करेगा। तो जहाँ तक मेरी ताकत है, जहाँ तक मेरा पुरुषार्थ है, जहाँ तक मैं जिंदा हूँ, मैं किनारे पे जाने के लिए प्रयास करूँगा। और यही प्रयास मुमुक्षु का होता है यथार्थ रूप में, और यही प्रयास ज्ञानी का होता है। प्रयास की यथार्थता में कोई अंतर नहीं है।
अब उसी मनुष्य की भूमिका में भी तो ऐसा हो सकता है कि उसका पूछा करके चले चलता हो तो दवाई लेने का ज्यादा दिक्कत नहीं चले, क्योंकि परेशानी सारी होकर के लेना पड़ता है।
ऐसा भी तो होता है, परेशानी तरीके करके भी लेना पड़ता है, दूसरों को भी विकल्प का कारण होता है, अपने को शरीर के लिए क्या करना है, ठीक होगा तो और धर्म साधन करेंगे, नहीं ठीक होगा तो भी धर्म साधन करेंगे, ठीक होगा तो भी धर्म साधन, हमको तो एक ही काम करना है। ऐसा भी कभी होता है,
किसी का ऐसा चलता है, किसी का ऐसा पुरुषार्थ चलता है अवश्य ही उसको दवा नहीं लेना चाहिए।
हाँ
नहीं लेना चाहिए,
वो तो नहीं लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता ही है ना,
तो ऐसा लेने के लिए नहीं देना।
हाँ तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा प्रयोग भी करते हैं, नहीं लेने का भी प्रयोग करते हैं वो मुझको।
हाँ
हाँ देंगे और तो देंगे,
प्रेशर क्या देंगे, मुंह में डाल देंगे
उनकी उनकी जगह
प्रेशर क्या देंगे, मुंह में डाल देते हैं,
मुंह में डाल देते हैं
तो क्या
है तो उनकी जगह ठीक है, पेशेंट पेशेंट की जगह ठीक है, दूसरे लोग दूसरे जगह अपने जगह ठीक है, ऐसा ले लेना ठीक है।
वो तो सुला देते दवाई लेकर के, दवाई लेकर सुलवा देते
और तेज पुरुषार्थ
करते हैं। मुझे कभी ये रिक्वेस्ट करना पड़ता था तुमसे पंचम काले, मुझे कभी ये समझाना पड़ता
है, समझाना पड़ता है ठीक बात।
उनसे उनको तो और बोलना चाहिए कि तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ाओ, तुम्हारा पुरुषार्थ का कमी क्यों हो रहा है, मुझे तो उसको बोला जाता है, वो जो दवा देते पंचर डालो मुझे थोड़ी है, तो मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा,
ये तुम्हारी नहीं चल रही है, तो जूठा भाई के चल रही है वाद्या, जूठा भाई की तबीयत क्या चल रहा है, तुम्हारी तबीयत क्या थोड़ी ना चलता है, ठीक है बैठा देना, उसमें मना ही थोड़ी करते हैं, वो तो कहते हैं बराबर कहते हैं तुम जो है, पेज नंबर 170 है गुजराती में, हिंदी में देख लेना। यह तुम्हारा माना हुआ मुरब्बी के लिए कोई भी प्रकार से हर्ष शोक करना नहीं, मैंने मेरे लिए माना हुआ मुरब्बी, वो मुरब्बी मानते थे शायद साल दो साल बड़े हैं, क्योंकि 21 साल की उम्र में तो ये चिट्ठी लिख रहे हैं, तो जेठा भाई करीब 19-20 साल के होंगे, ज्यादा कोई अंतर नहीं था, फिर भी वो मुरब्बी मानते थे, ज्ञान में भी बड़े थे, आयु में भी मामूली से बड़े थे। लिखे कि तुम्हारे माने हुए मुरब्बी के लिए, मुरब्बी को इन्वर्टेड कॉमा किया है, कोई मुरब्बी करके कभी संबोधन किया होना, किसी भी प्रकार से हर्ष शोक नहीं करेगा, उसकी इच्छा मात्र संकल्प विकल्प रहित होने की ही है, उसकी मैंने मेरी इच्छा, तो हर प्रकार से संकल्प विकल्प से रहित निर्विकल्प हो जाना है, मेरा जो निर्विकल्प स्वरूप है उसमें लीन होकर के मैं निर्विकल्प ही हो जाऊं, संकल्प विकल्प में तो आकुलता है, दाह है, अंतर्दाह है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही, पूछे डाले में लिया कहें, तो मेरी इच्छा तो संकल्प विकल्प रहित होने की है, उसको और इस विचित्र विचित्र जगत को कुछ लागता वलगता या लेना देना नहीं है। लागता वलगता का क्या हिंदी लिया है,
लेना देना,
लेना देना तो दूसरा शब्द है, या करके लिखा है
कुछ संबंध या लेना देना,
कुछ हाँ संबंध, लागता वलगता मैंने कुछ संबंध, लागता वलगता में हमारे क्या है कि तनिक भी संबंध नहीं है, थोड़ा भी संबंध नहीं है, गाढ़ संबंध हो उसको लागता वलगता नहीं बोलता, लेकिन कोई बिना संबंध वाले गड़बड़ करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि तुम्हारे नमारे शू लागे वड़गे, कहते कि थोड़े संबंध क्या है कि तुम्हें आ रही इंटरफियर था उसको हमारी बात में, कोई संबंध होने इंटरफियर था अलग बात है, अगर संबंध इंटरफियर था तो एने एम कहवामां आवे અમારે ને તમારે શું લાગે વળગે, એટલે કે થોડો તો સંબંધ છે નહીં, પછી શા માટે આટલું, તો કહેતે હૈ કે હમકો ઇસ વિચિત્ર જગત કે સાથ થોડા ભી સંબંધ નહીં હૈ, કે જગત બહુત વિચિત્ર હૈ, કભી ક્યા બાત કરેગા, કભી કોણ ક્યા બાત કરેગા, કભી કોણ ક્યા બાત કરેગા, કભી કિસકો સીધા પડેગા, કભી કિસકો ઉલટા પડેગા, समझ में नहीं आएगा, और पीछे तो कई प्रकार की प्रकृतियां होती है मनुष्य की, कभी किस प्रकृति का उदय, किस प्रकृति का उदय, कभी किस प्रकृति का उदय। तो देखते हैं कि इस विचित्र जगत से मेरा तो कुछ संबंध नहीं है और मुझे इस जगत के साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। तो इसमें से इसके लिए चाहे जैसा विचार बंधे या बोलने में आए उसके प्रति अब जाने की इच्छा नहीं है। इसके प्रति मैंने, मेरे प्रति कोई कैसा भी अभिप्राय विचार मैंने कोई कैसा भी अभिप्राय रखे या कोई कुछ भी बोले, हमको इसके प्रति उपयोग देने की कोई इच्छा नहीं है। कोई कैसा भी बोलेगा, कोई कैसी भी बात होगी, हमको कोई इसका विकल्प नहीं है। जगत में से जो परमाणु पूर्व काल में इकट्ठित किए हैं ये आहिस्ते आहिस्ते उनको वापिस देने का, देकर के ऋण मुक्त होना, यही इसकी सदा सब उपयोगी वाली प्रिय, वाली मैंने प्रिय और श्रेष्ठ और परम जिज्ञासा है, मैंने भावना है। क्या कहते हैं कि जगत में से जो परमाणु पूर्व काल में इकट्ठे किए हैं, मैंने जो कर्म के परमाणु संचित किए हैं, जो कर्म बंधे हुए हैं, वो तो जगत में थे पहले वातावरण में, वो संबंध को प्राप्त हुए हमारे राग द्वेष से, हमारे अपराध से हुए, अब धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो कर्म के उदय को भोगते हैं, वो परमाणु बिखरते जाते हैं, तो जगत के परमाणु हम जगत को वापस कर रहे हैं। जैसे कोई कर्ज लिया था वो कर्ज चुका रहे हैं, ऋण मैंने कर्ज, उसमें ऋण ही शब्द है, कर्ज कर्ज लिया है हिंदी में, ऋण मुक्त होना, ऋण ऋण शब्द हिंदी में भी है, गुजराती में भी ऋण है। ऋण मुक्त होना यही मेरी सौ उपयोगी दरकार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, उपयोग पूर्वक प्रिय प्रिय भावना है, ये मेरी प्रिय भावना है कि मैं जल्दी से जल्दी ऋण मुक्त हो जाओ, और ये श्रेष्ठ और परम भावना है मेरी, मैं निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाओ, सभी कर्मों के परमाणु को वापस देकर के जगत को मैं निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाओ, यही मेरी परम प्रिय भावना है। परम प्रिय भावना है, परम शब्द भी है और प्रिय शब्द भी है, और ये बोझा है वो आहिस्ते आहिस्ते मैं हल्का कर रहा हूँ और आखिर में पूरा का पूरा खत्म करके रहूँगा। बस फिर तो निर्वाण पद को प्राप्त होता है, निष्कर्म अवस्था तो निर्वाण पद है, मोक्ष अवस्था है, ठीक है। वो कहेंगे आगे कि आत्मभाव में सदा समस्त रखना, यही कहेंगे, वो शिक्षा दे रहे हैं आगे। इसकी परम भावना है, परम प्रिय जिज्ञासा है, बाकी उसको कुछ आता नहीं, इसके सिवा हमको कुछ नहीं आता, यही कार्य आता है हमको, कैसे मुक्त होना यही हमको आता, बीजू कहीं आवड़तू नहीं मन है। बहुत जगत के कार्य में भी बहुत विचक्षण थे, बंबई से वो चिट्ठी लिख रहे हैं, 21 साल की उम्र में जो कारोबार वो चलाते थे वो इनके पार्टनर्स लोग जो थे वो नहीं चला सकते, वो चलाते थे, उनके डिसीजन पर सब निर्भर रहता था। सारा जो बागडोर था व्यवसाय का वो कृपाल जी के हाथ में था। लिखते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है बड़ाई नहीं करते, अपने विचार ही नहीं करते, देखो हम इतना इतना काम करते हैं। उन दिनों में विदेश से काम करते थे, प्रदेश से काम करते थे और तरह तरह के बिजनेस थे उनके। तीन ऑफिस का तो एड्रेस मिलता है, भवानियाँ गए थे तो इनके पाइधुनी पर ऑफिस तो प्रसिद्ध थी, जहाँ झोरी बाजार में जवेरात का काम करते थे, और भी दो ऑफिस थे। तो ऐसे शाम को चले जाते थे वहाँ दूसरे ऑफिस पे झोरी बाजार से, और वहाँ सत्संग चलता था शाम को हमेशा, तो भी रात को देरी तक भी सत्संग चला रहता था, चलता रहता था। ऐसे नियमित रूप से सत्संग भी करते थे, बिजनेस करते थे इतना बड़ा तो भी, और कई प्रकार के कमीशन का काम था, वो भी कमीशन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पढ़ा। ये बहुत विचक्षण रूप से बिजनेस में भी इतनी बहुत विचक्षणता थी, बहुत प्रमाणिकता थी, ऑनेस्टी थी उतनी। तो लगते हमको कुछ नहीं आता है, हमको तो ये ऋण मुक्त कैसे होना, कर्म का क्षय कैसे करना, वही हम काम कर रहे हैं, दूसरा काम हमको नहीं आता है। उसको कुछ आता नहीं और दूसरा कुछ चाहते भी नहीं, इच्छते भी नहीं। पूर्व कर्म के आधार से इसका सघला विचार करने का है। ऐसा समझकर परम संतोष रखना, ये जो बाहर में कुछ भी थिंकिंग या विचार चलता है उसमें प्रारब्ध को ही मुख्य रखते हैं, पुरुषार्थ को नहीं। वरना कर्ता बुद्धि हो जाएगी, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरी चतुराई से, मेरी अक्कल होशियारी से इतना इतना काम हुआ, वो पूर्व कर्म मुख्य है। और उसके आके आधार से विचार करते हैं, जो भी विकल्प आते हैं उदय के अनुसार आएंगे, फल भी आएगा उदय के अनुसार आएगा। तो विकल्प किसी काम का आता है तो भी पूर्व कर्म अनुसार, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो भी पूर्व कर्म है, दोनों में समाधान है। उपाधि में समाधि है, उपाधि में भी समाधि है। पूर्व कर्म के आधार से उसका सगला विचार करने का विचरना है, विचरना विचरना मैंने जो भी प्रवृत्ति करना है वो पूर्व कर्म के आधार से है। ऐसा समझकर परम संतोष रखिएगा। यह बात गुप्त रखना, इसका कोई ढोल टिपना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ये तो हमारी गुप्त आचरणा है कि पूर्व कर्म के अनुसार हमारी विचरना मैंने प्रवृत्ति हो रही है और जो भी विकल्प आता है वो भी पूर्व कर्म अनुसार होता है, हम उसमें जुड़ते नहीं, हम तो भिन्न ही भिन्न रहते हैं। और ये बात गुप्त रखना है। अपन क्या मानते हैं अथवा किस प्रकार से वर्तते हैं ये जगत को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या मानते हैं और हम क्या प्रवृत्ति करते हैं, यानी हमारी मान्यता भी निर्दोषता की है और हमारी प्रवृत्ति भी निर्दोषता के लिए है, और ये मार्ग इतना निर्दोषता का बहुत सुंदर है, फिर भी किसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो हम ऐसा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो कभी एडवर्टाइज में नहीं गए, वो चाहते तो जग प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते थे, कितने अपने गांव के प्रसिद्ध नहीं, अपने स्टेट में नहीं, इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल की व्यक्ति थी वो, शायद इनके काल में वर्ल्ड लेवल में इनकी बराबरी में कोई आदमी नहीं होगा, कोई मनुष्य नहीं होगा। इस उम्र में जो इनकी जो 18 साल की उम्र में उन्होंने जो शतावधान किया मुंबई में, और उस वक्त वो ऐसा बोले हैं कि ये तो हमने शतावधान किया है, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, और अगर हम चाहें ना तो सहस्त्रावधान भी कर सकते हैं। क्या? सहस्त्रावधान भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना है। तो शतावधान करने से बंबई के गुजराती अंग्रेजी वो भी अखबार रखे हैं लोगों ने, उस अखबारों में बहुत प्रशंसा हुई, तो सारे इंडिया में वो बात, सारे भारत में वो बात तो फैल गई कि कोई असाधारण व्यक्ति है। तो एकदम सतर्क हो गया, सावधान हो गया, कह रहे ये प्रसिद्धि हो जाएगी, उनको मान में चढ़ना हो जाएगा, 18 साल की तो उम्र है लड़के की, मान में चढ़ जाएगा, अपने को तो भी आप काम करना बाकी है, अपने को तो अपना काम पहले करना है, ये प्रसिद्धि में नहीं जाना है, वरना हम तो वहां फिसल जाएंगे, फंस जाएंगे। तो एकदम गुप्त हो गए, बाद में कभी शतावधान नहीं किया, और कोई भी जिसकी भी उनके पास चमत्कारिक शक्ति थी एक का भी प्रयोग नहीं किया, किसी का भी प्रयोग नहीं करते थे, और कोई ऐसी बात करते थे मुमुक्षु भी इनके पास तो उसको रोक देते थे, ऐसी बात हमारे सामने मत करो, ऐसी बात में हमको कोई रस नहीं है, आपको भी नहीं आना चाहिए, हमको तो नहीं है आपको भी नहीं आना चाहिए, आपको नुकसान हो जाएगा, बंद करो इस बात को, ऐसा कर देते थे। तो गुप्त हो गए, तभी से वो गुप्त हो गए। तो कहते हैं इस बात को गुप्त रखना, मैं अंदर में मुक्त होने का पुरुषार्थ में लगने वाला हूँ, लग रहा हूँ, उसको भी आउट नहीं करना है, साथ किसी को मालूम नहीं करना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मा को इतना ही पूछने की जरूरत है कि जो तू मुक्ति को चाहता है तो संकल्प विकल्प राग द्वेष को छोड़ दे, और इस भावों को छोड़ने में तुझे कोई बाधा हो तो बोल दे, बता दे, इसका रास्ता निकाल दे। देखो कैसा बात किया है कि आत्मा को इतने ही पूछने की जरूरत है, आत्मा को इतना ही पूछने की जरूरत है खुद को, कि अगर तुमको मुक्ति चाहिए, इस संसार से तुझे मुक्त होना है, तो फिर तुम संकल्प विकल्प राग द्वेष क्यों करता है, क्या जरूरत है तुम्हें, किस बात की जरूरत है, तुम किसकी अपेक्षा है। इसलिए पूर्णता का लक्ष्य वाले को जहां तक आशा अपेक्षा की बात आती है वो लक्ष्य नहीं बनता, पर आशा अपेक्षा छूटते उसको ही लक्ष्य बनता है। तो इसके पहले वो अपने आप को पूछ लेता है कि अगर तुझे मुक्त होना है तो छोड़ सब राग द्वेष संकल्प विकल्प छोड़ दे, किसे लेना देना है तेरा, और ऐसे परिणामों छोड़ने में तुमको आपत्ति कौन सी है, वो भी बता दे हो, तो परिणाम छोड़ने में तुझे कोई आपत्ति होने वाली है ही नहीं, क्या कोई भय लगता है, क्या डर लगता है, क्या जहां तलाश कर लो अपने में, हा? ये संकल्प विकल्प राग द्वेष छोड़ेंगे तो ऐसा होएगा, वैसा होएगा, तो क्या होएगा, ऐसा कुछ आता है अंदर में से, देखो ऐसा होने से तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा, और लक्ष्य भी नहीं बंधेगा, या दृढ़ मुमुक्षुता की उत्पत्ति नहीं होगी। सत्पुरुष की पहचान भी दृढ़ मुमुक्षुता उत्पन्न होने के बाद होती है प्राय, जैसे समुद्र में लिया है, जैसे समुद्र में है। गुजराती में पेज 494 उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है बड़ा वाला, उसमें बीच में है, तथापि खरी पहचान तो, सत्पुरुष की खरी पहचान तो दृढ़ मुमुक्षुता प्रकट होने से, पहले शर्त हो गया है कि तुमने निर्धार किया कि मुझे वो छूटना ही है। कोई सभी प्रकार की संसार के सुखों की आशा अपेक्षा को छोड़ करके तुमने निर्णय लिया है कि मुझे छूटना है, निर्धार कर लिया है, तो दृढ़ मुमुक्षुता की प्राप्ति है, क्योंकि फिर मोक्ष के लिए ही प्रयास होगा। 254 अनुसार कि फिर मोक्ष के लिए ही प्रयास होगा, तो दृढ़ मुमुक्षुता का प्रकट होने से ये पहली शर्त है। तथारूप सत्समागम से प्राप्त उपदेश को अवधारण करने से दृढ़ मुमुक्षुता में, अगर सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग में उपदेश मिला, उसको अवधारण करना मैंने अमलीकरण करना, एग्जीक्यूट करना, ऐसा ऐसी योग्यता आई, तो दोनों में निर्मलता होती है। दृढ़ मुमुक्षुता होने से भी निर्मलता होती है कि उपदेश के अमलीकरण का जो फोर्स रहता है, संवेग आता है, उसमें और निर्मलता बढ़ती है। हमको लागू पड़ती है उसके अमलीकरण में हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो निर्मलता आएगी आएगी और आएगी, और वही करने लायक है, उसमें आगे बढ़ना है। और अंतरात्म वृत्ति परिणाम है, कभी अंतर्मुख हो जाना है, आत्मा में अंतर्मुख होना है, कभी संकल्प विकल्प राग द्वेष को छोड़ करके भीतर में जम जाना है। ये मेरा ठहरने का स्थान है, जमने का स्थान, जैसे ठंड में घी जम जाता है ना, ठंड में घी जम जाता है, वैसे भीतर में मुमुक्षु का ऐसा वातावरण बन जाए, भीतर वैसे भीतर में मुमुक्षु का ऐसा वातावरण बन जाए कि उसके परिणाम अंदर जमने लगे, ठहरने लगे, शांत होने लगे, ऐसी अवस्था में सत्पुरुष की सही पहचान, वास्तविक पहचान आती है। और वही पहचान प्रत्यक्ष संकेत है, वास्तव में तो संकेत का बीज है वो, इसलिए वो 17 नंबर की गाथा आत्मसिद्ध में लिखी, स्वच्छंद मत आग्रह तली वरते सदगुरु लक्ष्य संकित तैने भाकियो, मैं तो संकित का बीज, लेकिन संकित तैने भाकियो कारण गणी प्रत्यक्ष। ये पहचान हुई, पतन छूट जाएगा, अपना पूर्वग्रह छूट जाएगा, मताग्रह छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। वो कहे वो ब्रह्म वाक्य, जो सत्पुरुष कहे वही ब्रह्म वाक्य, मेरे लिए तो वही परम सत्य है, बात खत्म। तो उनको जो पहचान के परिणाम हुए उसमें 522 नंबर का पत्र है, 551 में पहले आश्रम की जो लिया है आत्म पुरुष की वचन की प्रतीति होती है, आज्ञा रुचि होती है और स्वच्छंद निरोध भक्ति हो जाती है और सम्यक प्रतीति के साथ अचल प्रेम की भी उत्पत्ति हो जाती है। और इसके चरणों में लिया है वो प्रेम कभी विचलित नहीं होता। तो उस तरह के जो परिणाम होते हैं तो कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में उस बात को एक छाप स्टैंडर्ड दे दिया कि ये तो उस भूमिका का संकेत है, मुमुक्षु की इस भूमिका का वो संकेत है। पर वही समझ इस भूमिका का आत्मज्ञान है, क्योंकि संकेत और आत्मज्ञान तो अलग अलग रहते नहीं, तो एक साथ रहता है, अभेद रहता है। और वही इस भूमिका का सदाचरण है, सम्यक आचरण है, और यही इस भूमिका का सच्चा पुरुषार्थ है। और वहां शांति आएगी ही आएगी, संकित आए और शांति नहीं आए वो तो बनने वाली है नहीं। सर्वगुणांश वही संकित तो है, इस भूमिका के सभी गुण आ जाएंगे, यानी सभी उत्तम कोटि के मुमुक्षुता के आनुषंगिक परिणाम होते हैं, तो सभी वहां आई जाएंगे। तो कहते हैं कि अपने आत्मा को इतने ही अंतर में पूछने की जरूरत है कि यदि तू मुक्ति चाहता है ईमानदारी से, अगर तू मुक्ति चाहता है तो संसार में तो प्रेम रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो तुमको डुबाने वाला है। तो संकल्प विकल्प राग द्वेष को छोड़ो, और उस छोड़ने में कोई आपत्ति हो तो दिखाओ, बता दो। तो ये मुक्त होने वाला आत्मा है ना, बहुत बढ़िया बात लिखा है, अपने आप मान जाएगा, उसको मनाना नहीं पड़ेगा। अगर मुक्त वाला मुक्ति होने वाला आत्मा होगा ना, जिसको वास्तव में ईमानदारी से मुक्त होना ही है, तो अपने आप मान जाएगा। देखो क्या लिखे, ते पुतानी तेनी मिले मानी जैसे, अने तेनी मिले मुक्ति जैसे। राग द्वेष को भी छोड़ देगा वो, अपने आप मान जाएगा और अपने आप राग द्वेष को छोड़ देगा, क्योंकि वही उसकी रुचि होगी। राग द्वेष छोड़ने की तो उसकी रुचि है, करने की रुचि थोड़ी नहीं, छोड़ देगा। कैसी कलम चली है, मुक्त होने वाले मुमुक्षु के लिए इससे बढ़िया मार्गदर्शन कौन सा हो सकता है। एक एक पत्र में ठोस तत्व भरा है, ठोस तत्व भरा है। मुमुक्षु के लिए तो यही परम तत्व ज्ञान है। तो तुम मुमुक्षु हो मतलब तुम मुक्त होने वाला हो, देख अंतर में पूछ, अपने आत्मा को पूछ ले कि तुमको ये राग द्वेष संकल्प विकल्प छोड़ने में आपत्ति क्या है। कोई जोर आता है तुमको तो बता दे, किस बात का जोर आता है तुमको। अगर मुक्त होने वाला हो गया तो उसका सिम्टम दे दिया कि ईमानदारी से जिसको मुक्ति होना है उसका आत्मा तो मान जाएगा, उसको कोई जोर नहीं आएगा, तो संकल्प विकल्प राग द्वेष को छोड़ेगा, क्यों तो उसको तो कुछ चाहिए नहीं। जहाँ तहाँ से मैंने जैसे कैसे भी राग द्वेष से रहित होना, जहाँ तहाँ लिया है, जैसे कैसे लिया है, जहाँ तहाँ लिया, लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, पावर्स में तो ऐसा है, जैसे कैसे भी राग द्वेष रहित होना, यही मेरा धर्म है। मेरा धर्म तो वितराग होने का है, दुनिया वालों से मेरा क्या संबंध है, जो भी संबंध व्यवहारिक तौर से है वो अंतर से छूट जाता है। बाहर में ठीक है, प्रसंग पड़ता है उदय का तो अपना जो सर्विस रेंडर करने का बात आता है सर्विस रेंडर करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अंदर से कोई लगाव नहीं। जहाँ तहाँ से राग द्वेष से रहित होना, यही मेरा धर्म है। और यह तुमको फिलहाल उपदेश दे जाता हूँ। क्या लिखा है उपदेश?
मैं अभी आपको
बताई देता हूँ, गुजराती बहुत फरक है। अत्यारे हूँ तमने ते बोधि जाऊँ छो, बताना एक बात है, उपदिष्ट कर, उपदिष्ट कर, उपदेश करके जाता हूँ। ट्रांसलेशन में तो थोड़ा गड़बड़ी हो गई, या अंदर तो मूल भाषा का आना बहुत कठिन है। अरे तुमने अत्यारे थे बोधि जाओ, सुख राग द्वेष था, तुम पण राग द्वेष रहित हो जाओ, यही मेरा बोध है, यही मेरा उपदेश है। और भी मैं बोध देकर चला जाता हूँ, न कोई मेरा आग्रह है, न कोई मेरा दुराग्रह है, न कोई मेरी जोर जबरदस्ती है, न कोई बलात्कार है। जाते जाते बोल देता हूँ, मैं तो वितराग हो रहा हूँ, तुम भी यही हो जाओ। जिन मंदिर में स्थापना इसीलिए है कि ये मूर्ति ऐसा कहती है कि देखो तुम हमारे प्रति, देखो तुम कैसे वितराग होकर के बैठे हैं, हो जाओ तुम ऐसा, तुम ही ऐसे हो जाओ। अंदर में तुम्हारा स्वभाव तो एकदम चैतन्य धीम है, तुम बाहर में भी धीम हो जाओ ना, तो मूर्ति यही बताती है। एक प्रकार का उपदेश का ही कारण है, और कोई बात नहीं उसमें, जो हेतु है तो उपदेश का ही है उसमें। ये सब ये प्रयोग बाबू जी करते थे, चैतन्य धीम हो जाओ ना, ऐसा में कभी कभी अंदर में जमते थे ना, जमे रहते थे बहुत घंटों, धीम हो जाओ, जैसे सोना है गर्म करते प्रवाहित होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, थोड़ी भी ठंड मिलती है इसी हालत में, जो हालत में वो लिक्विड में है उसी हालत में धीम हो जाता है। और गुजराती मैंने धारियो कैसे पूछे, जेते हालत में ये जामी जाए छे, तो गुजराती मैंने नाम धारियो कैसे, हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं, लेकिन गुजराती में तो उसको धारिया बोलता है। धीम हो गया, सोने का धीम हो गया, तो तुम चैतन्य धीम हो जाओ, जैसा है वैसा ही जम जाओ अंदर में। परस्पर मिलेंगे तब, अब तुमको कुछ भी आत्मत्व साधना बताएंगे, बताना होगा तो बताएंगे, बताना होगा तो बताएंगे। कितना सहज है, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। विकल्प आ गया कि उसको आत्मापणा, मैंने आत्मस्व, आत्मस्वरूप, आत्मभाव, आत्मस्वभाव बताना है। जूठा भाई को आत्मस्वभाव बताने का इरादा है, तो कहते हैं कि रूबरू मिलेंगे ना परस्पर, जब तब आपको कुछ बताना होगा तो बताएंगे। इस वक्त जो इस प्रकार का इनिशिएटिव मूड हो गया तो आपको बता देंगे, कृत्रिमता से वो बताया नहीं जाता और चिट्ठी में वो लिखा नहीं जाता। आत्मत्व बताने की चीज है, बोलने की और लिखने की नहीं है, क्योंकि वचना वचनातीत है, वचनातीत है ना, वचनातीत है, विकल्पातीत है। उनको बताएंगे, रूबरू मिलेंगे तब आत्मभाव बताएंगे, तो देखो आत्मभाव कैसा होता है। बाकी धर्म मैंने ऊपर कहा वही है, राग द्वेष से मुक्त होना, यही मेरा धर्म है, यही मेरा स्वभाव है, जो मैंने ऊपर कहा है, आगे कहा है, और वही उपयोग रखना, उसकी ही सावधानी रखना, उपयोग रखना, सावधानी रखना, दरकार रखना, जागृत रहना, ये सब भाव उसमें आ जाते हैं कि हमको राग द्वेष से मुक्त होना है, हमको राग द्वेष नहीं बढ़ाना है, किसी हो सके उतना खत्म करना है, और उसके लिए हमारा जीवन है। हमको राग द्वेष बढ़ाना, संसार बढ़ाने के लिए हमारा देश बढ़ाना, संसार बढ़ाने के लिए हमारा जीवन नहीं। हाँ, वो आते ही नहीं बेचारे, वो बेचारे पैदा ही नहीं होते ना। आत्मा इतना ताकत वाला है कि उसकी भावना से वो दूर भागने लगते हैं। जैसे ही सोया हुआ है तो हजारे मच्छर बैठते हैं, हजारों मच्छर बैठ जाते हैं, तो करवट भी नींद में बदलता है ना तो भगने लग जाते हैं, नींद में भी करवट बदलता है। तो ये डाउन हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, डिप्रेशन में आ गया, हाईली डिप्रेशन में आ गया कि मैं, मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो त्याग से मारा गात्रो ध्रुजे थे, गीता में आवाता है अर्जुन ना मोटे से श्लोक बोला था कि मारा गात्रो ध्रुजे थे, गात्रो मतलब हाथ पग ध्रुजते हैं, कंपते हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे तो हाथ पग कंपने लग गए। तो श्री कृष्ण कहते कि अरे क्या करता है तुम, क्या बोलता है तुम, तुम ऐसा करो, लड़ाई नहीं करना है, तुम अपना गांडीव धनुष को, धनुष का नाम था, गांडीव धनुष को उठाओ, उसकी डोरी को खींच करके उसमें से आवाज निकालो, उसको टंकार कहते हैं, धनुष टंकार, तेरे धनुष के टंकार से सेना भगने लग जाएगी कि अरे इतना कोई जबरदस्त आदमी है कि जिसके धनुष का टंकार भी हमको मारता है, तो उसके बाण से हमारी क्या हालत होगी। बाण तो हाथ में नहीं लिया, अभी तो डोरी खींची है। ऐसे सही आत्मभावना है ये, तो एक अनंत सामर्थ्य संपन्न जो अपना स्वरूप है उसकी डोरी खींचने की बात है, टंकार करने की बात है। तीव्र आत्मभावना में आओ, ये राग द्वेष पैदा ही नहीं हो गया, बहुत से तो पैदा ही नहीं हो, भगने लग जाएंगे। इसलिए उपयोग रखना, उपयोग यही साधना है, जितनी जागृति उतनी मुमुक्षुता, मुमुक्षु की भूमिका में, और ज्ञान दशा में भी जितनी जागृति उतनी ही साधना, साधना है, बाकी सब विराधना है। विशेष साधना तो मात्र सत्पुरुष के चरण कमल है, ये भी बोल जाता हूँ, बोल देता हूँ। जब काम करते हैं आगे आपका आत्म साधने में हुआ डाली कृपाल जी हमने खुद ने डाली। अंदर में उपयोग में रहना, आत्म जागृति में रहना, ये साधना है, ये सामान्य साधना है। क्या विशेष साधना तो क्या शब्द प्रयोग किया है, विशेष साधना तो मात्र सत्पुरुष के चरण कमल है, ये भी कहकर के चला जाता हूँ, इसके लिए भी मैं खड़ा नहीं रहता हूँ, ये बोल के निकल जाता हूँ, ऐसा करके ये भी कहीं जाऊं छो, कहीं ने जाऊं छो, वक्त निकला है। आत्मभाव में श्रद्धा रखना, जाने आने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या है इसमें टोन बहुत बढ़िया है, जब बात ही निकली है तो, कि कोई बात का मैं अगर तुमको कोई परमार्थ की भी बात बताता हूँ, मैं जोर जबरदस्ती बलात्कार नहीं करता, जैसे कोई रास्ते में चलने वाला राहगीर होता है, कोई रास्ते के भूला हुआ उसको बोलता है कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो चलते चलते कहेगा कि इधर चलो ना, उधर 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 आपको उधर जाना है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो रास्ता बता करके चला गया। उसने इतना भी महसूस नहीं किया कि मैंने इसके पर उपकार किया है, वो भटकेगा नहीं, सही रास्ते पे आगे बढ़ेगा। तो मैं तो मेरे रास्ते पे जाता हूँ, और उसने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, उसको मैंने कुछ दिया तो नहीं, मेरे 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 पास से तो कुछ दिया तो नहीं। तो उस तरह से जैसे एक राहगीर रास्ता बताते जाता है, ऐसे सत्पुरुष भी उतने निष्प्रभ होते हैं कि अगले का तो पूरा कल्याण हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हम तो अंगुली निर्देश कर दिया, तुमको पॉइंट आउट कर दिया कि ये करना है तुमको, सत्पुरुष के चरण कमल में तुमको रहना है, अंगुली निर्देश कर दिया, उसका भी हमारी जबरदस्ती नहीं है, उस पर हमारा कोई बलात्कार नहीं है कि तुम आओ इधर आओ इधर आओ, क्यों नहीं आते वो, क्यों नहीं आते वो बात नहीं है, ये रहना तुम्हारा हित का कारण है, और कोई बात नहीं है। निष्कारण ऐसी में भी आया है, बहुत जगह आया है निष्कारण करुणा बात, सूक्ष्म ऐसी में तो जोर से आया है। अभी एक पैराग्राफ रह गया, समझ में गया कितना टाइम निकलेगा मालूम नहीं है मुझे इसलिए छोड़ दिया। आत्मभाव, क्योंकि वक्त कस है, जो एक एक वचन है उसमें वक्त कस है, आत्मभाव में
लिखा
है, हाँ की बात कर दिया, वरना वो बात थी ना, नहीं आएगी ये बात जो है ना, वो फीलिंग स्टेज की है, जिसको सत्पुरुष मिले और जिसका जीवन को पलटा हो गया, उनको लाभ नुकसान का हिसाब किताब बैठ गया पूरा का पूरा, तो मैं कितने नुकसान से बचा और आइंदा मुझे आने वाला लाभ कितना बड़ा है। तो उसको उतनी ताकत आ जाएगी कि सारी दुनिया को ठोकर मार के सत्पुरुष के चरण कमल में रहेगा, उसकी ताकत आ जाएगी। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया तो इसके बराबरी में किसका मूल्य है? मुझे तो किसी का मूल्य नहीं है, तो मूल्य नहीं रहता है, वो तो अंदाज आ जाता है, ताकत भी आ जाती है, सब होता है। और यही विशेष साधना है, उसका बहुत तेजी से आत्मकल्याण हो जाता है। आत्मभाव में समस्त रखना, सभी बातों को आत्मकल्याण के लक्ष्य से ही देखना है, धर्म ध्यान में उपयोग को रखना है, सावधानी तो धर्म ध्यान के रहने रखनी चाहिए। जगत के कोई भी पदार्थ, सगे कुटुंबी मित्र, इसका कोई हर्ष शोक करने योग्य ही नहीं है, किसी का हर्षोक मत करो। हर्षोक तो लगाव से होता है ना, बोलिए कि किसी के लिए हर्षोक करने योग्य नहीं है। जितना भी लगाव रहेगा ना उतनी गड़बड़ी ज्यादा होगी, उतना प्रतिबंध हो जाएगा। जगत के किसी भी पदार्थ से ज्यादा तो होता है मनुष्य को, कुटुंब के साथ, मित्र के साथ वो ज्यादा होता है, और दुर्गति का कारण भी वही है। कुटुंब प्रति का जितना भी लगाव है, कोई बड़ा पाप करने से दुर्गति होती वो बात नहीं है, अपना जो कुटुंब प्रतिबंध है ये सभी पापों का उत्पादक है, और वही रस जीव को दुर्गति में ले जाता है। जबकि ये कुटुंब का संबंध बहुत अल्पकालीन है और उसमें भी कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। अपने राग के अनुकूल बना तो ठीक है, अपने राग के अनुकूल नहीं बना तो इतनी गड़बड़ करेगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ कौन खड़ा है, ये बात हो जाएगी। फिर भी जीव मोह के वसात सब भूल जाता है और अपने आप को दुर्गति में ले जाता है। वो तो वही होगा, जो करेगा वही बोलेगा ना, हम ऐसा करता है तुम भी वैसा करो। संसारी तो संसार का उपदेश करेगा, ज्ञानी मोक्ष का उपदेश करेगा, वो तो वही बात बनेगा। परम शांति पद को चाहते हैं उसमें कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान तो पूरा का पूरा है ही कि अपना परमार्थ छूट जाएगा, अपना परमार्थ छूट जाएगा, अपना आत्मकल्याण छूट जाएगा, इससे बड़ा नुकसान कौन सा हो सकता है? निर्भर कर सकता है, हो ही नहीं सकता।
हमारा शांति बनी गई या जो भी है ऐसे करके वो बात करेगा, पर अभिप्राय में उसकी ये बात है, ये बात का उसको पता कैसे पड़े?
तो सत्संग से पता चलता है, इस बात की जब खुली चर्चा होती
है।
सिम्टम तो वही है कि खुद का खिंचाव कहाँ है वो पता चल जाता है, अभिप्राय तो पता चल ही जाता है, बात कोई भी किसी भी शब्द में हो अभिप्राय का तो पता चल ही जाता है।
मुख्यता
मुख्यता से कहाँ मुख्यता चली जाती है उस पर से अभिप्राय का पकड़ आ जाती है, क्योंकि जहाँ अभिप्राय है वहाँ ही मुख्यता है। तो जहाँ अधिकता दी है वो इसका सिम्टम है, अगर सिम्टम को देखना है तो अधिकता कहाँ होती जाती हो जाती है सहज रूप से, विचारे बिना विचारे कहाँ अधिकता हो जाती है, वही इसका सिम्टम है, वही प्रतिबंध है, वही दुर्गति का कारण है। परम शांत पद को चाहते हैं, यही अपना सर्वसंबंध धर्म है। अब इसको शांति चाहिए, जैसे कैसे भी हमें आत्म शांति चाहिए, आत्मा को अशांति नहीं चाहिए, और यही सर्वसंबंध धर्म है। और यही इच्छा में, और इच्छा में यही मिल जाएगा। और जिसको आत्म शांति की चाहत है वही चाहत में वो आत्मशांति मिलती है, क्योंकि आत्मशांति मिले मिला उसको कहीं, मिले बिना उसको कहीं चैन पड़ेगा नहीं, नहीं। तो उस चाहत में वो मिल जाएगी। इसलिए निश्चित रहना आत्मशांति को की चाहत में रह करके निश्चिंत रह, निश्चिंत रहना।
अगर हमारे को पर
से निर्भर
करना पड़ता है,
ये भी तो प्रतिबंध है, ये कल्पना है आधार बुद्धि की। आधार बुद्धि छूट गई तो कोई तकलीफ नहीं, सुख बुद्धि और आधार बुद्धि से प्रतिबंध ज्यादा अधिक रहता है। आधार बुद्धि और सुख बुद्धि छूटी या मंद हो गई तो कोई आपत्ति नहीं होती। इसलिए निश्चिंत रहना, मैं कोई गच्छ में नहीं, मैं आत्मा में हूं, यह भूलना नहीं, विस्मृत करना नहीं। क्या बोले, मैं कोई गच्छ में यानी संप्रदाय में नहीं हूं, तो मैं कहाँ हूँ? अस्ति नास्ति दोनों से बात क्लियर कर दिया कि मैं तो मेरे आत्मा में हूँ, और आत्मत्व प्राप्त करना यही मेरा धर्म है, मुझे संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। और ये बात मत भूलना, इसका मतलब कि मेरे नाम से भी कोई संप्रदाय मत बनाना। क्या होता है कि महाविद्य क्षेत्र में तो थोड़ा समय तो जाएगा, 10 मिनट से ज्यादा जाएगा, महाविद्य क्षेत्र में तो तीर्थंकरों के अलावा किसी का संप्रदाय बनता ही नहीं आता। जबकि भरत क्षेत्र में और खास करके इसका इस हुंडाव सर्वपिणी काल में दूसरे दूसरे महापुरुषों का संप्रदाय बन जाता है। जैसे रामचंद्र जी हुए तो इनका एक संप्रदाय अलग चलता है, आज कृष्ण हुए महापुरुष हुए इसका एक और संप्रदाय चलता है, जैसे कृपालु देव हुए तो इसका भी एक संप्रदाय और चलता है आज, और उतना तगड़ा चलता है कि कृपालु देव के आश्रम में कृपालु देव खुद अभी देव पर्याय में है, वो आएंगे ना तो कोई स्वीकार नहीं करेंगे, हमको तो ये श्रीमद राजचंद्र चाहिए जो इस फोटो में है ना, ऐसा चाहिए हमको तो। आप तो ये मुकुट पहना है, आभूषण पहना है, हमारे राजचंद्र ऐसे नहीं थे। हमको इधर में एक अनुभव हुआ, ऐसे एक पकड़ वाला आदमी यहाँ था, ट्रस्टी नहीं था लेकिन ट्रस्टी से ज्यादा अधिकार से बात करता था, तो सूचना बार बार उस अधिकार से दे जाता था, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दरी भी, जैसे बहने के दरी पास पास में थी, दरी को अलग रखो, बीच में इतना खाली जगह रखो, दो दरी साथ में अड़नी नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो ऐसा। तो क्या हुआ कि वहाँ स्वतंत्र मंदिर है, हम लोग तो जाते नहीं हैं, तो आभूषण वगैरह लगा रहता है, आँख खुली रहती है मेरे, तो उसको पता चल गया। तो बोले कि शाम को आप लोग इधर आरती में नहीं आते हैं, तो एक दो जने गए होंगे तो किसी ने आर्ग्यूमेंट दे दिया कि नहीं नहीं आए थे ना हम लोग, तो आप एक दो चार जने आए थे, सचिव भाई तो नहीं आए। तो किसी ने बोला सचिव भाई तो इस वक्त ध्यान में बैठते शाम को, नहीं आए होंगे। तो बोला कि ध्यान में बाद में बैठता, पहले भगवान के पास आरती में आएगा, अधिकार से बात करता था, ऐसा नहीं चलेगा इधर। फिर दूसरे दिन कोई आरती में गई नहीं, क्योंकि आपस में चर्चा हुई। तो बोला कि जाना क्या नहीं जाना, तो नहीं जाएंगे आप लोग को, किसी को जाना तो आप जानो, हम तो किसी को आदेश तो करते नहीं कि आप जाना, कि हम नहीं जाएंगे। हम लोगों को जाना हो तो जिसको जाना वो जाइए, नहीं जाना वो मत जाइए, हम तो किसी को ऐसा नहीं कहते कि आप मत जाओ आप जाओ, ऐसा तो करते नहीं। तो कोई गए नहीं, तो फिर कहे कि कृपालु देवी की जो आरती हो रही थी वहाँ सब गए पूरे के पूरे। तो उसने क्या किया कि आरती उठा ली, और जहाँ तक आरती चल रही वो पकड़ करके बैठ गया। उसमें राजेंद्र भाई थे, डॉक्टर राजेंद्र भाई सूरत से आए थे, सूरत से आए थे। उसने आरती लेने की चेष्टा की तो नहीं दिया, हम नहीं देंगे, आप किसी को आरती नहीं मिलेगी बोल दिया, आप किसी को आरती नहीं मिलेंगी, आरती करने नहीं देंगे, और निकल जाओ सब बाहर यहाँ से, और कल आपका खाना भी मैं बंद करा दूंगा, यहाँ पर उससे आपकी नहीं बनेगी। तो राजेंद्र भाई ने बोला कि भगवान कसाई मत करो, क्या बोला वो, अरे भगवान कसाई मत करो, हम भी कृपालु देव के भक्त है। तो वो क्या बोला, ये श्रीमद राजचंद्र दूसरा है, तुम अपने अपने श्रीमद राजचंद्र दूसरे वाले के पास जाओ, बहुत जगह जगह है कि मैंने अलग अलग आश्रम बहुत है, वहाँ चले जाओ, ना इधर मत आओ, इधर तो भी ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा चलाएंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यो राजेंद्र भाई तो काफ़ी इधर स्वाध्याय कराने को बड़वा में जाते हैं, इधर आते हैं, तो उनको सब ट्रस्टियों से परिचित थे। उसने टेलीफोन लगाया, तो ये आदमी जो इधर है आपका कौन है हमको मालूम नहीं, उसका क्या अधिकार है सकता है मालूम, लेकिन इस प्रकार से मिसबिहेव कर रहा है ऐसा लगता है, इसलिए आपका ध्यान खींचा है, आप इनसे बात कर लो। तो उनको बिठा करके इनके सामने ही बात कर लो, आप बात कर लो। तो उन्होंने बोला कि तुम ये गड़बड़ मत करो, और ऐसा तुमको अधिकार रखने की जरूरत नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, इन लोगों को हम जानते हैं, तुम ये इस तरह से हमारा इज्जत का सवाल होता है अगर तुम ऐसा करते हो, तो हमारे इज्जत का सवाल होता है, ये तुमको नहीं करना है। तो उनको बहुत बुरा लग गया और वो आश्रम छोड़ के चला गया, लेकिन थोड़ा सलट करके गया। उसने चिट्ठी लिख दिया कि हमारा मिसबिहेवियर हो गया है, हम माफ़ी चाहते हैं, मेरे पास भी आ गया, मेरे कमरे में मेरे से भी क्षमा कर लिया, दूसरों से भी हाथ जोड़ लिया, मेरी भूल हो गई है, मैं कोई स्पष्टी नहीं हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा मिसबिहेव कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, अब मैं सुधर करके यहाँ आऊँगा, आऊँगा ऐसा करके कुछ सामान रखकर कुछ छोड़ करके चला गया। तो क्या बोले कि दूसरे दूसरे राजचंद्र के पास जा, ये राजचंद्र के पास नहीं। तो क्या एक संप्रदाय बुद्धि हो गई कि जब कृपालु जो खुद आज्ञा करते हैं कि मैं कोई गति में नहीं, मैं आत्मा में हूँ, उसको भूलना मत। भूलना मत किसका मतलब क्या, कि भविष्य में भी मेरे नाम से कोई संप्रदाय मत चलाएगा। तो श्रीमद राजचंद्र का एक संप्रदाय, कांजी स्वामी का दूसरा संप्रदाय, फलाने का तीसरा संप्रदाय, ये सब होने लग गया। जो ज्ञानी है, जो गच्छमत में संप्रदाय में मानते नहीं है, इनके नाम से संप्रदाय चलने लग जाता है, ये इसकी आज्ञा विरुद्धता है, इसके आज्ञा के अगेंस्ट में लग जाता है। बहुत क्लियर लिखा है इधर, देह जिसका धर्मोपयोग के लिए होता है, यह देह रखने का जो प्रयत्न करता है वो भी धर्म के लिए ही है। इसलिए तुम्हारी जो बीमारी है उसमें तुम चाहते हो कि ये देह को बर्बाद नहीं करके थोड़ा प्रिजर्व करके धर्म साधन करे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। धर्म साधन करने के लिए ये हेतु है तो अच्छी बात है। लिमिट पर आई थी उनका प्रचार करना एक बात है, और उनका प्रचार इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जिसके दूसरे ज्ञानी का भी निषेध हो, दूसरे ज्ञानी का भी कोई
यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकते। ज्ञानी का गुणानुवाद कितना भी करो उसमें तो दर्शन में है तो अनुवाद टूटता है, दर्शन में खत्म होता है, उसका तो महिमा करने से मना करोगे। तो जिस तरह से गलत रूप से ऐसा तरीके करोगे ज्ञान का नाम लेने से एलर्जी हो जाएगी।
Guru